बीच में अगर आयु पूर्ण हो जाती है तो फिर वो सम्यक दर्शन क्षायिक नहीं कहलाएगा, उसको भी क्षायोपशमिक ही मानेंगे। तो ये क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन वाले जीव को ही क्षायिक सम्यक दर्शन कहते हैं। और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन उसका है तो अब वो प्रक्रिया जो प्रारंभ करते हो तो सात प्रकृतियों में से छह प्रकृतियों को नष्ट कर चुका है, एक बची रहती सम्यक तो प्रकृति। तो वो जो समय है उसका नाम शास्त्रों में कृतकृत्य वेदक है। और उस समय अगर आयु पूर्ण हो जाती तो फिर वो आयु जो बंदी होगी वहां तो जाना ही पड़ेगा, नरक में जाएगा तो पहले पृथ्वी में जाएगा। तो अपर्याप्तक अवस्था में इस तरह बनता है क्षायिक और क्षयोपशमिक। और क्षयोपशमिक अगर सहज रूप से किसी को है और क्षायिक की प्रक्रिया उसने प्रारंभ नहीं की है तो फिर वैसा क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि साथ में लेकर के नहीं जाएगा, वो मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। एकदम मरते समय उसका सम्यक छूट जाएगा और वहां जाएगा तो मिथ्यात्व अवस्था में ही उसका जन्म होगा। फिर पर्याप्तक होने के बाद वापस सम्यक दर्शन उसको हो सकता है। फिर तिर्यक गतो, तिर्यंज गति की बात इसके अपन ने चर्चा की थी पिछली बार। तो तिर्यंज गति में तिर्यंचों के पर्याप्तक अवस्था में औपशमिक सम्यक दर्शन हो सकता है। अब औपशमिक सम्यक दर्शन ऐसा है कि जिसमें सात प्रकृतियों का उपशम किया और अंदर निर्मलता आ गई, तत्वार्थ श्रद्धान हो गया, औपशमिक सम्यक दर्शन। अब उसके दो प्रकार के भेद हो सकते हैं। यहाँ जिसकी चर्चा चल रही है वो तो प्रथमोपशम है, और जो मुनिराजों को होता है श्रेणी में जाते समय वो द्वितीय उपशम होता है। तो प्रथमोपशम वाले चारों गतियों में मिल सकते हैं, लेकिन द्वितीयोपशम वाले सिर्फ मनुष्य और देवगति में होते हैं। और देवगति में किस अपेक्षा से होते हैं उसकी चर्चा अभी आगे आ रही है, वैसे अपन ने पिछले बार भी की थी लेकिन थोड़ा नया विषय होगा कुछ लोगों के लिए इसलिए दोबारा उसको बतला देते हैं। और क्षायिकं क्षायोपशमिकं च पर्याप्ता पर्याप्त का नाम अस्ति। पर्याप्त और अपर्याप्तक अवस्था में क्षायिक और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन तिर्यंचों में हो सकता है, लेकिन वही बात है अपर्याप्त अवस्था में कैसे बनेगा। तो जो जीव क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुका है अथवा कर रहा है वो अगर अपनी आयु बंद के अनुसार तिर्यंच गति में जाता है तो फिर अपर्याप्त अवस्था में भी उसके पास रहेगा। अपर्याप्त अवस्था आपको याद है कि भूल गए, दो दिन में क्या होती है अपर्याप्त अवस्था? जब उसके अंदर वो प्राण धारण की शक्ति पूरी नहीं हो पाती तो उसको अपर्याप्त दशा बोलते हैं, और जब वो शक्ति पूर्ण हो जाती है तो उसको पर्याप्तक बोलते हैं। तिरश्ची नाम क्षायिकम नास्ति। अब तिर्यंच गति में जो स्त्री जाती है तिर्यंच पर्याय में, जो जैसे तोता है और तोता की जो पत्नी तोती, अथवा और भी किसी गाय है जैसे भैंस है, ये सब स्त्री जाति में आते हैं तिर्यंच गति में, तो उनके पास क्षायिकम नास्ति, क्षायिक नहीं होता। क्योंकि क्षायिक सम्यक दर्शन के लिए नियम है कि उसको प्राप्त करने वाला मनुष्य भाव का पुरुष ही होगा, द्रव्य से तो पुरुष होगा, भाव में कदाचित किसी जीव के पायण समा कहिम विषमा, गुमटसार जीव कांड की गाथा है कि अक्सर जैसा शरीर होता है वैसे भाव होते हैं। अगर स्त्री का शरीर होगा तो स्त्री जैसे भाव होंगे, पुरुष का शरीर होगा तो पुरुष जैसे भाव होंगे, लेकिन कहीं विषमा, कहीं ये चीज विषम पाई जाती है। शरीर स्त्री का है लेकिन भाव पुरुष के हैं, शरीर पुरुष का है लेकिन भाव स्त्री के हैं, ऐसा वेद वैषम्य में भी यहाँ कर्म भूमियों में पाया जाता है। भोग भूमियों में ऐसी स्थिति नहीं बनती लेकिन कर्म भूमियों में ऐसा हो सकता है। और शरीर पुरुष का या स्त्री का और अंदर उदय नपुंसक वेद का भी हो सकता है। तो भावों में ऐसा अंतर यहाँ कर्म भूमि में कहीं कहीं संभव है। अब जैसे कहते हैं ना, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली एकदम पुरुषों के जैसे लड़ी थी। तो फिर एक ऐसा दृष्टांत बना लेते हैं लोग कि भाई शरीर से तो स्त्री थी लेकिन भावों से पुरुष। इसी प्रकार कोई शरीर से पुरुष हो लेकिन भावों में स्त्री हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा सर्वत्र तो नहीं होता लेकिन कहीं कहीं हो सकता है। पर ये नियम याद रखना कि नांतर मौहूर्तिका वेदा संति तत्र कषाय वत् आजन्म मृत्यु तस्तेषाम उदयो दृश्यते यत। पंच संग्रह का श्लोक है कि जिस प्रकार क्रोध मान माया लोभ अंतर मुहूर्त के परिणाम है और फिर बाद में बदल जाते हैं, क्रोध आता है फिर थोड़ी देर बाद मान कषाय आ जाती है फिर माया कषाय, ऐसा कुछ कहीं से भी कहीं किसी भी कषाय में बदलता रहता है। ये क्रम नहीं है कि क्रोध के बाद मान ही आता है फिर माया ही आती है फिर लोभ ही आता है, ऐसा नहीं। क्रम कहीं भी व्युत्क्रम हो सकता है लेकिन बदल जाती है कषाय अंतर मुहूर्त में। लेकिन वेदा न अंतर मौहूर्तिका, अंतर मुहूर्त के नहीं होते वेद। वेद यानी स्त्री वेद, पुरुष वेद, स्त्री के भाव, पुरुष के भाव, नपुंसक वेद संबंधी भाव, ये न अंतर मुहूर्त अंतर मुहूर्तिका, अंतर मुहूर्तिक नहीं होते कषायों के जैसे। फिर कैसे होते हैं? तो आचार्य कहते हैं आजन्म मृत्यु तस्तेषाम उदयो दृश्यते यत, क्योंकि जन्म से लेकर मरने तक वो एक ही भाव रहता है। जैसे स्त्री वेद का किसी को आ गया जन्म में, जन्म के समय उदय, तो फिर वो जन्म से मरण तक स्त्री वेद का ही उदय होगा। शरीर स्त्री का भी हो सकता है, शरीर और भी कोई हो सकता है, पुरुष का भी हो सकता है। उसी प्रकार किसी का शरीर पुरुष का है तो उसको जन्म से मरण तक जो वेद उदय में आ जाए, अगर पुरुष वेद आ गया उदय में तो फिर वो मृत्यु तक पुरुष वेद का ही उदय रहेगा, बीच में बदला नहीं जा सकता। नहीं, उदय इसी का नाम है ना। नहीं, नपुंसक वेद के निषेक उदयावली में आ सकते हैं लेकिन फिर स्तिबुक संक्रमण से वो पुरुष वेद में ही ढल कर निकलेंगे। वो इसको स्तिबुक संक्रमण नाम की एक प्रक्रिया, संक्रमण यानी परिवर्तन। अब कर्मों में जो परिवर्तन होता है, वो जैसे किसी ने दान दिया और दान देते समय बड़ा पुण्य कमा लिया उसने, अच्छे भाव थे उसके, और बाद में घर आकर के बोलता है कहाँ फंस गए, तो अब क्या होता है कि उसने जो बाद में पछतावा होता है उसको दान का, तो फिर वो जो पुण्य कमाया था वो फिर परिणत होकर संक्रांत हो जाता है, बदल जाता है। बंधे संका मिज्जदी, गोमट सार में एक गाथा आती है कि वो वेदनी कर्म का बंध बांध रहा हो तो फिर जो सत्ता में कर्म पड़ा हुआ है वो उस रूप परिणमन कर जाता है। जैसे वो पछता रहा है, पछताते समय कौन से कर्म का बंध होगा, साता का कि असाता का, असाता का। अच्छे काम पर पछता है तो फिर असाता का बंध होगा। तो उस समय क्या होगा कि अंदर जो साता कर्म बांधा है उसने, वो एक स्थूल दृष्टांत है ये, सूक्ष्मता से देखो तो बहुत गणित वाला विषय हो जाएगा ये, लेकिन स्थूल दृष्टांत ऐसा है कि उस समय असाता को बांधते समय उसके अंदर जो साता पड़ी हुई है प्रकृति, वो असाता के रूप में बदल जाती है। ऐसे संक्रमण के, ये तो मोटे दृष्टांत वाली बात है, लेकिन संक्रमण के कई भेद होते हैं, विद्यात संक्रमण, गुण संक्रमण, स्तिबुक संक्रमण, उद्वेलना संक्रमण, कई कई प्रकार के भेद हैं उसके। तो उसमें स्तिबुक संक्रमण उसको कहते हैं, उसके इंक टैबलेट का उसमें दृष्टांत है। जैसे पहले स्याही की टिकड़ी आती थी पुराने उसमें, और फिर उसको घोल करके पानी में ऐसे वो रखते थे खड़िया में, और फिर उसमें वो डिबा करके कलम लिखते थे। तो वो जो स्याही की टिकड़ी है टैबलेट, उसको अगर पानी के नल के टोटी में आप लटका दें तो नल से निकलने वाला पानी तो स्वच्छ है लेकिन नीचे पात्र में भरने वाला पानी नीला होगा। बस इसी प्रकार अपने अंदर से तो दुनिया भर के कर्मों के निषेक आते रहते हैं, अपनी स्थितियां पूर्ण करते हैं जब कर्म, तो वो परमाणु आना ही है, उनको तो निकलना ही है, लेकिन कुछ ऐसे नियम है कि हर कर्म का उदय हर जगह नहीं आ सकता। जैसे अभी गति ध्रुवोदयी प्रकृति है और अपन ने पहले से कितनी सारी गतियां बांधी, इस जीवन में भी बहुत सारी गतियां बन सकती। एक जीवन में मनुष्य मनुष्य गति का भी बंद कर सकता है, देव गति का भी बंद कर सकता है, आयु तो एक ही बंधेगी, गति की बात कर रहे हैं हम। और फिर चारों गतियों का बंद किया लेकिन जब उदय आएगा
तो जिस पर्याय में जिस गति का उदय रहता है, उस उदय में परिणत होकर के जो दूसरी गतियों के परमाणु उदय में आने वाले हैं, वो संक्रमण को प्राप्त हो जाते हैं और स्तिबुक संक्रमण के माध्यम से वो उदित होते हैं। जैसे अभी अपने को जन्म से मरण तक मनुष्य गति का उदय रहेगा, पक्की बात है। तो मनुष्य गति का उदय रहेगा तो पिछले जन्मों में जो अपन ने दूसरी गतियों का बंध बांधा है उनका क्या होगा? मान लो उनकी स्थिति 15 साल में पूर्ण हो रही है उन कर्मों की, तो 15 साल बाद क्या नरक गति का उदय आ जाएगा? नहीं आ सकता, क्योंकि मनुष्य आयु के साथ नरक गति का उदय नहीं बनता। तो फिर वो जो नरक गति के परमाणु है वो मनुष्य गति के परमाणुओं में बदल करके उदय में आते हैं, ये संक्रमण की विधि। तो अभी क्या चर्चा थी अपनी? तिर्यंच गति में जो स्त्री जाति है वहां पर सम्यक वेद वैषम्य की चर्चा चल रही थी अपनी। तो वेदों की विषमता यहाँ कर्म भूमि में मनुष्यों में भी होती है, तिर्यंचों में भी हो सकती है, लेकिन देवों में और भोग भूमि के जीवों में वो वेद वैषम्य नहीं पाया जाता। देवों में अगर जन्म से उसको देवी का शरीर मिला है तो स्त्री वेद का ही उदय रहेगा जीवन भर, और अगर देव का शरीर प्राप्त हुआ है तो फिर पुरुष वेद का उदय रहेगा। वैसे ही भोग भूमि की बात, अब विक्रिया करके अगर कोई देव देवी का रूप बना ले तो वो बात अलग है, लेकिन अंदर जो वेद का उदय है वो वही रहेगा। जैसे कई बार मनुष्य लोग भी नाटक खेलते हैं, नाटक खेलते हैं तो स्कूल में कुछ बच्चियों को भी मूंछ बना दी जाती है और स्टेज पर वो राजा बन करके ऐसे मुकुट लगा करके चले आते हैं, डायलॉग्स बोलते हैं। तो उस समय जन्म से जो वेद उदय में रहेगा वहां पर भले वो पुरुष की एक्टिंग करे, लेकिन वेद जो रहेगा वो स्त्री वेद का ही उदय रहेगा, जो भी उदय में है उसके, उसका परिवर्तन नहीं होता। ये विशेष बात। अब जो अभी सर्जिकल परिवर्तन किया जाता है, जो एक मेडिकल टेक्निक है ना, कि जिससे लड़के को लड़की बना दिया, अब ऐसा मंडी बामर में हुआ था एक बार, हम लोगों का 88 में चातुर्मास हुआ था, मुनिश्री क्षमा सागर जी, योग सागर जी के साथ हमारा, मतलब हम चौमासा कर रहे थे, तो उसी मंडी बामोरा में 2 सहेलियां थी और उनका इतना ज़्यादा स्नेह था बचपन से, और दोनों को मालूम था कि अपन लड़कियां हैं तो फिर शादी होगी तो फिर कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। तो फिर उनमें से एक ने वो सर्जरी करा ली और फिर पुरुष बन गया, बोले कि अपन शादी करेंगे, बोले, और ये घटना हो गई वहां पर। तो ऐसी कई घटनाएं होती है। तो वो द्रव्य वेद हो गया शरीर, लेकिन जो भाव वेद है वो बदल नहीं सकता, उसको बदलने की कोई तकनीक अभी है नहीं। तिरश्ची नाम क्षायिकम नास्ति, स्त्री पर्याय में तिर्यंच गति में जो पहुंचे हुए जीव हैं उनको क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होता। और यहां से अगर, वैसे तो क्षायिक सम्यक दर्शन मनुष्यों को ही होता है, और प्राप्त करते करते अधूरा प्राप्त हुआ और फिर मरण हो जाए तो फिर क्षायोपशमिक के साथ वहां चले जाता है। और क्षायिक सम्यक दर्शन जो चारों गतियों में बताया है वो उत्पत्ति की अपेक्षा से नहीं है, वो आयु बंध के कारण किसी मनुष्य को वहां जाना पड़ा है इस बात का संकेत है। और वो मनुष्य भी शरीर से पुरुष है, ये भी याद रखना, भावों से कुछ भी हो सकता है, स्त्री पुरुष नपुंसक, क्योंकि इसमें आगे चलकर 10वें अध्याय में इसका खुलासा है कि मोक्ष जाने वाले जीव भूतपूर्व नए की अपेक्षा से किस वेद के धारक होते हैं, तो बताया द्रव्य से तो पुरुष ही होते हैं और भाव से तीनों वेद के धारक होते हैं। फिर अल्प बहुत तो प्ररूपणा में बताया कि सबसे ज्यादा कौन से वेद वाले जीव मोक्ष जाते हैं, फिर उनसे कम कौन होते हैं, फिर उनसे कम कौन होते हैं, ऐसा विस्तार किया। इसका मतलब ये हुआ कि भाव से तीनों वेद हो सकते हैं, और तीनों वेद अगर भाव से होंगे तो ये समझना कि उसी भाव में, अंतिम भाव में ही उस जीव ने क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया हो, क्योंकि उस पिछले जन्म में अगर किसी जीव को सम्यक दर्शन हो जाए, क्षायिक सम्यक दर्शन, तो फिर वो इस जन्म में स्त्री वेद के साथ उत्पन्न नहीं हो सकता, नपुंसक वेद के साथ उत्पन्न नहीं हो सकता, वो फिर पुरुष वेद के साथ आएगा। ऐसा है, ये चीज प्रवचन सार ग्रंथ में 14 गाथाएं आती है, जिसमें आचार्य जयसेन स्वामी की टीका तो उपलब्ध है, अमृतचंद स्वामी की टीका नहीं मिलती, और उसमें ये आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने सिद्ध किया है कि स्त्री पर्याय से मुक्ति क्यों नहीं हो सकती। कोई महावीर भगवान को किसी से राग द्वेष था क्या कि भाई हम जिनको बताएंगे वही मोक्ष जाएंगे और फिर बाकी लोग नहीं जा सकते, ऐसा तो था नहीं। लेकिन फिर भी किसी एक प्रवक्त्री ने एक दिन कहीं पर इस बात पर आक्षेप उठाया था भगवान पर कि महावीर स्वामी ने हम नारियों के प्रति बड़ा अन्याय किया है, यानी मोक्ष प्राप्ति का निषेध करके बड़ा अन्याय किया है। फिर सभा तो ऐसी रहती है कि जिससे प्रभावित हो जाए उसकी हर बात आंख मूंद करके हाँ में हाँ भर देती है। फिर बाद में जब ये चर्चा विस्तृत हुई तो फिर अनेकांत पत्रिका में उसका फिर निराकरण भी निकला कि महावीर स्वामी ने अन्याय कुछ भी नहीं किया, अगर वो अन्यायी होते तो केवली नहीं होते, क्योंकि केवली कभी अन्यायी होते नहीं। जो वस्तु स्थिति है वो चीज उन्होंने निष्पक्ष भाव से कहा। केवली भगवान का उपदेश कैसे होता है, उनके अंदर कोई इच्छा है क्या? इच्छा नहीं है, वो तो भवि भागन वश जोगे वशा है, ऑटोमेटिक उनकी वाणी खिरती है। और फिर उस पर भी एक बहुत सूक्ष्म चर्चा चली थी पहले खानिया तत्व चर्चा में, पंडित फूलचंद जी ने उस पर बहुत गहरा विषय लिया था एक, कि केवली की जो वाणी है वो एक पृथक परिणमन है और उनका जो केवल ज्ञान है वो एक पृथक परिणमन है। केवल ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय है और ये जो वचन है ये वचन योग का परिणमन है। इसलिए केवली भगवान जो जानते हैं उसका और उनकी जो वाणी खिरती है उसका एकदम कोई डायरेक्ट संबंध बनाया नहीं जा सकता। लेकिन ये बात भी एक वस्तु स्थिति है कि जो उनकी वाणी में आता है वो केवल ज्ञान हो जाने के बाद ही उनकी वाणी दिव्य ध्वनि के रूप में खिरती है। कैसा? तो ठीक है, फिर प्ररूपित हुआ, लेकिन प्ररूपण के लिए उनने कुछ पुरुषार्थ नहीं किया ना, ये बात बता रहे। वो सहज रूप से वचन योग से वाणी खेल रहे। नहीं, उनके ज्ञान में तो समग्र है, समग्र है, लेकिन समग्र का कथन एक साथ नहीं हो सकता। तो कथन करने के लिए जम्बुदीप 1,00,000 योजन है, या फिर वो पूरा तीनों कालों को लेकर के फिर कथन करते हैं। बाकी सब कुछ उनके ज्ञान में तो सब साथ में आता है। उनके ज्ञान में द्रव्य भी आता है, पर्याय भी आती है। और अभी एक चर्चा और निकली थी कि उनके ज्ञान में सिर्फ अणु आते हैं, स्कंद नहीं आते। तो ये चर्चा कुछ उचित नहीं लगती, क्योंकि उनके ज्ञान में अणु कैसे आएंगे? अगर स्कंद पर्याय में है तो वो पर्याय आएगी कि नहीं आएगी? अगर नहीं आएगी तो फिर केवल ज्ञान अधूरा है। तो खैर ये सब बातें तो है, पर अभी अपनी जो चर्चा है वो ये है कि स्त्री पर्याय से जीव, किसी भी जीव को क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं होता शरीर से अगर स्त्री पर्याय हो। तो इसीलिए तिरंच गति में जो तिरश्ची है, गाय है, भैंस है, या फिर कोई पक्षी चकली है जैसे चिड़िया, ये सम्यक दर्शन के साथ उत्पन्न नहीं होती भोग भूमि में। अगर कोई जीव सम्यक दृष्टि हो और उसको तिर्यंच गति में जाना हो तो फिर वो भोग भूमि में जाएगा, यहां नहीं, कर्म भूमि में नहीं आएगा। औपशमिक क्षायोपशमिक ये दो प्रकार के सम्यक पर्याप्तक तिर्यंचों में ही पाए जाते हैं, न अपर्याप्तिका नाम पर्याप्तिक। ठीक है, स्त्री वेद की बात चल रही है। औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन हो सकता है गाय को, भैंस को, किसी भी स्त्री जाति के पशु को, लेकिन अपर्याप्तक अवस्था में नहीं बनता, क्योंकि उसके साथ जा नहीं सकते, उत्पन्न नहीं हो सकते। फिर मनुष्य गति में मनुष्यों की बात बता दी थी कि पर्याप्त अपर्याप्त तक दोनों अवस्थाओं में क्षायिक क्षायोपशमिक दोनों सम्यक दर्शन होते हैं। औपशमिक सम्यक दर्शन सिर्फ पर्याप्तकों को होता है, अपर्याप्तकों को नहीं हो सकता, क्योंकि औपशमिक सम्यक के साथ मरण नहीं है। फिर मानुषीणाम तृतयम अपि अस्ति, पर्याप्तिका नाम एव न अपर्याप्तिका नाम। और मानुषी यानी स्त्री वेदी जो मनुष्य हैं उनमें तीनों सम्यक दर्शन होते हैं, क्षायिक भी होता है, लेकिन पर्याप्तिका पर्याप्तक अवस्था में ही होता है। यहाँ भाव वेद की अपेक्षा है, द्रव्य से अगर स्त्री पर्याय है तो नहीं बनेगा। हाँ, तो उसमें एक पंक्ति और थी इसमें, वो अभी इस प्रति में नहीं मिल रही अपने को, क्योंकि पुरानी इसको देख करके आक्षेप कर सकते ना। वो पुरानी जो सर्वार्थ सिद्धि छपी थी पहले की, संस्कृत संस्कृत वाली, उसमें तो स्पष्ट थी वो पंक्ति, द्रव्य स्त्री नाम क्षायिकम नास्ति। इन्होंने दी है क्या नीचे कहीं, या फिर इसमें लिया होगा शायद इन्होंने प्रस्तावना में अपने। नहीं, लेकिन ये कौन से ग्रंथ में? अच्छा, उसमें क्या है कि कथा भाव प्रधान होती है, इसलिए कुछ चीजें उसमें बहुत प्रामाणिक भी होती है, लेकिन कुछ बातें ऐसी जैसे कोई उपदेश सूत्र है उसमें किसी को समझा रहे कि तू अगर बात नहीं मानेगा तो नरक जाएगा, तो अब अगली पर्याय तो कोई ना कोई होगी एक, लेकिन बात नहीं मानेगा तो नरक जाएगा, ये समझाने का सूत्र, क्योंकि पर्याय तो एक ही होना है कोई, तो फिर वो मान लेता बात, ऐसे बात सुन करके मान भी लेता है, और मान लेता है तो फिर उसकी गति ठीक होती है। तो ये उपदेश कथन, तो मानुष यानी स्त्री वेदी मनुष्यों में तीनों हो सकते हैं, लेकिन पर्याप्तक अवस्था में ही तीन बनेंगे, अपर्याप्तक में नहीं बन सकते। अपर्याप्त अवस्था में किसी गति में स्त्री पर्याय में सम्यक दर्शन नहीं होता। वो तो बताया था ना, तीर्थंकर की माता भी मिथ्यात्व के साथ ही उत्पन्न होती है, शची भी, इंद्राणी जो शची है, तो खैर शची इंद्राणी, जब तीर्थंकर की माता तो सर्वोच्च हस्ती है ना, स्त्री पर्याय में उनसे बढ़कर कौन हो सकता है। हाँ, देवगति में भी नहीं बनती हुई बात। फिर देवगति में कह रहे हैं कि देवों में पर्याप्तक और अपर्याप्तक दोनों के तृतीयम अपिवस्ति, तीनों सम्यक दर्शन हो सकते हैं। फिर यहाँ पर शंका होती है कि औपशमिक सम्यक दर्शन अपर्याप्तक अवस्था में किस प्रकार संभव है, यदि ऐसा पूछो तो आचार्य कहते हैं चारित्र मोह के उपशम पूर्वक जो मरण को प्राप्त हुए हैं उनकी अपेक्षा। मतलब ये हुआ कि श्रेणी में जैसे आयु पूर्ण हो जाए किसी की, आदिनाथ भगवान ने पूर्व भव में वज्रनाभि मुनि की पर्याय में अंत में 6 महीने की संलेखना धारण की थी, 6 महीने उपवास किए थे पूरे लगातार और बैठे रहते ऐसे, तो उनके शरीर से लताएं लिपट गई थी, बामियां बन गई थी, चींटियों ने राफड़े वगैरह बना लिए थे, और फिर वो बैठे रहे, और अंत में जब आयु पूर्ण होने की थी तो 2 बार 11वें गुणस्थान में पहुंचे, और 11वें गुणस्थान में उनकी आयु पूर्ण हो गई और सर्वार्थ सिद्धि विमान में उत्पन्न हो गए, पर वो क्षायिक सम्यक दृष्टि थे। तो क्षायिक सम्यक दृष्टि की भी आयु पूर्ण हो सकती है 11वें गुणस्थान में, और ये द्वितीय उपशम सम्यक से भी उपशमक श्रेणी पर जाते हैं। ये सारे विषय जो है थोड़े से सैद्धांतिक विषय है, इसलिए जिनका अध्ययन बिल्कुल नहीं होगा उनको थोड़ा भारी पड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी सुनना तो जरूरी है, सुनना जरूरी इस हिसाब से कि अगर आपको आगे बढ़ना है थोड़ा स्वाध्याय में तो फिर ये विषय भी सुन लेना अपेक्षित होता है, और फिर जब समझ में आने लग जाता तो फिर इसमें ऐसा मन लगता है कि ऐसा मन और कहीं नहीं लगे, ऐसा एकाग्र हो जाता है मन। फिर भवनवासी व्यंतर ज्योतिषकाणाम देवानाम, भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष ये 3 प्रकार के जो देव हैं इनके देवी नाम च, और इनकी जो देवियां हैं उनके भी, और सौधर्म ईशान कल्प वासिनी नाम च, सौधर्म और ईशान कल्प की जो वासिनी यानी देवियां हैं उनके भी क्षायिकम नास्ति, क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं है। तेषां पर्याप्तका नाम औपशमिकम क्षायिक शमिकम चास्ते, और इनके जो पर्याप्तक होते हैं देव हो या देवी उनके औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन होता है। अब औपशमिक सम्यक दर्शन क्या है, क्षायोपशमिक क्या है, क्षायिक क्या है, इसके लिए दृष्टांत देते हैं कि औपशमिक सम्यक दर्शन ऐसा है जैसे पानी है थोड़ा सा मलिन है, मतलब थोड़ी धूल है उसमें, आपने फिटकरी डाल दी फटकड़ी तो धूल नीचे बैठ गई, ये औपशमिक सम्यक दर्शन का दृष्टांत है। जैसे किसी जीव के मिथ्यात्वादी सात प्रकृतियों का उदय है और फिर उसके कुछ परिणाम ऐसे बन गए कि वो प्रकृतियां अंतर मुहूर्त के लिए शांत हो गई, तब जो सम्यक दर्शन है उसका नाम औपशमिक सम्यक दर्शन। और फिर क्षायोपशमिक ऐसा है क्षीणा क्षीण वृत्ति, उसमें क्या फिटकरी डालने से पूरी धूल नीचे बैठ जाती है, ऊपर का बिल्कुल साफ रहता पानी, और फिर थोड़ा सा ऐसे हिला दो उसको तो पूरा मैला नहीं होता लेकिन क्षीणा क्षीण थोड़ी सी मलिनता उसमें आ जाती है। बस इसी प्रकार जिस सम्यक दर्शन में सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए तो फिर उससे क्या होगा कि बाकी छह प्रकृतियां तो नीचे शांत पड़ी हुई है, उदय में नहीं है, सदअवस्था रूपोपशम अथवा उदय क्षय की अवस्था में, और फिर जितनी मलिनता है, मलिनता भी है उसमें निर्मलता भी है, उसका नाम क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन। और क्षायिक सम्यक दर्शन उसका नाम है कि वो जो पानी साफ किया आपने फटकरी डालकर उसको ऊपर से अलग कर लिया और नीचे वाला जो भाग था उसको बाहर फेंक दिया, अब उस वो वाले पानी को आप कितना भी हिलाओ मैला नहीं हो सकता। उसी प्रकार क्षायिक सम्यक दर्शन उसमें जो ये जो नीचे जो मिट्टी बैठी है धूल, वो अपनी सात प्रकृतियां हैं कर्मों की, उन सात प्रकृतियों को जिसने जड़ से नष्ट कर दिया उस जीव का सम्यक दर्शन क्षायिक सम्यक दर्शन कहलाता है, और वो कभी नष्ट नहीं होता, मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी वो बना रहता है। और संसार अवस्था की अपेक्षा विचार करो तो फिर इसमें आगे आने वाला है सब वर्णन, चौथे भाव में क्षायिक सम्यक दृष्टि नियम से मोक्ष चला जाता है अधिक से अधिक, पांचवा जन्म नहीं होता, यहां से गिनना चालू करना एक, देखो कई बार लोग गिनती लगाते हैं तो खुद को छोड़ देते ना।